ओम शांति। बाप दादा रोज ज्ञान की पॉइंट्स को नई नई रीति से समझाकर हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ नया उमंग उत्साह बढ़ते रहते हैं। आज की मुरली में कौन सी बात ऐसी लगी जो कि हमारे पुरुषार्थ को और वेग दे दे, ऐसी कौन सी बात लगी? बहुत मीठा बनना है, वेरी गुड, सर्विस करना है। इसके लिए बाबा ने क्या बताया? मनुष्य से देवता बनने की सर्विस करनी है, इसके लिए क्या करना है? एक शब्द बाबा ने उसकी हड्डी धारणा। क्या मतलब है हड्डी धारणा का? नेचुरल धारणा तो हम सब जानते हैं, एक विषय है हमारा ज्ञान योग सेवा और धारणा, दिव्य गुणों की धारणा। हड्डी धारणा का क्या मतलब है? हड्डी जो होती है ना, शरीर की कड़ा पार्ट है, हड्डियों के आधार पर ही शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। तो हड्डी धारणा ऐसी हो कि कोई भी हमारा ज्ञान योग का ऐसी स्थिति हो कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, ये हमारा जो ज्ञान का ढांचा है ये एकदम सदा खड़ा ही रहे, विपरीत परिस्थितियां जितनी भी हो, लेकिन धारणा इतने अंदर तक की हो। हड्डी धारणा, जिसकी हड्डी कमजोर हो जाती है उसका और भी कई नुकसान हो जाते हैं, तो इसलिए हड्डी धारणा, धारणा ये अंदर तक हो। और उसी के ही रेफरेंस में बाबा ने कहा कि बुद्धि में क्या होना चाहिए? ज्ञान टपकना चाहिए। हाँ, ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान टपकना चाहिए, इसमें क्या फर्क है? हाँ? बात तो वही है लेकिन बहुत गहरा अंतर भी है। ज्ञान को बांटना चाहिए। अच्छा, और देही अभिमानी बनना, ज्ञान टपकना चाहिए। मुझे याद आता है कि इसी हॉल में ही बाबा मुरली चलाते थे, बाबा के साथ रहने का मौका मिला काफी, 5-6 साल तक। इधर बाबा बैठते थे, 3 संदली होती थी इधर मामा, बीच में भी एक संदली होती थी, उसमें बच्चे आकर बैठते थे। जब पहले पार्टी आती थी तो आके अपना सुनाते थे, परिचय देते थे किस उद्देश्य से मधुबन आए हैं। और जब जाने का दिन होता था, 1 हफ्ता पार्टी रहती थी पहले, तो उससे 1 दिन पहले फिर पार्टी वाले सब एक एक करके आते थे, अनुभव सुनाते थे, यहाँ से हम ये पॉइंट लेकर के जा रहे हैं, इसकी धारणा करेंगे जीवन में। और उससे बाबा माँ के सामने उसमें और भी बात में बल भर जाता था, शक्ति। बाबा को कोई करेक्शन देनी होती थी, बाबा भी करेक्शन देते थे। तो पहले जो ये ज्ञान था इतना सूक्ष्म नहीं था, स्थूल। मैं याद है पहले जब हम लोग ज्ञान में आए तो ज्ञान को मतलब तब अमृत वेले का भी इतना कंसेप्ट नहीं था, बस सुबह सब नहा धो के अपना आते थे और शाम सुबह वही 6:30 बजे से जैसे 7 बजे बाबा आते थे, क्लास होती थी, 6:30 से सब योग करते थे। फिर जितना जितना धीरे धीरे ज्ञान और सूक्ष्म होता चला गया, कुछ दिन पहले भी बाबा ने बोला ना, पहले उस समय ज्ञान था आत्मा और परमात्मा भी अंगुष्ठाकार है, परमात्मा ज्योतिर्लिंगम, आत्मा भी अंगुष्ठाकार, अंगूठे की। फिर बाबा और सूक्ष्म की आत्मा स्टार मिसल है, बस चमकता सितारा स्टार है, फिर और ज्ञान गुह्य होता चला गया कि स्टार भी बड़ा होता है, आत्मा तो एकदम बिंदी अति सूक्ष्म बिंदी स्वरूप है। और बाद में उस समय फिर अमृत वेले का ज्ञान कि भाई अमृत वेला शक्तिशाली है, तो तब यज्ञ में अमृत वेला भी और शुरू हो गया। फिर आप सबके देखते देखते भी देखा होगा ये ट्रैफिक कंट्रोल तो एक बार जब सुबह ज्ञान सुन लेते थे और फिर रात्रि क्लास होती थी, सारा दिन भर में याद की उतनी महत्ता नहीं थी। फिर ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ, 5 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, भाई 7 बजे, 10:30, 12 बजे आदि आदि, जिससे बीच बीच में भी बाबा की याद रहे, क्योंकि आत्मा पे कई जन्मों के विकर्मों का बोझा है। फिर उसे भी और सूक्ष्म बनाया बाबा ने, क्या करा, हर घंटे याद रहती रहे। तो ये जो है कंटिन्यूटी की तरफ, क्योंकि जब तक कोई बात कंटिन्यूअस नहीं होती है, लगातार नहीं होती है, वो संस्कार नहीं बनता और उसका पूरा लाभ भी नहीं रहता। तो ये एक एक घंटे की भी याद का ये चलता रहा। और इसमें क्या है कि जो बाबा आप कहता है बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए, टप टप टप, एक घंटे के बीच में भी काफी बड़ा अंतर हो जाता है और 60 मिनट का, बहुत परिस्थितियां घर गृहस्थी का, ऑफिस का, वातावरण की, उस सब के अंदर भी बाबा की याद भूल जैसी जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। और इसका भाव क्या है, कोई भी शक्ति लौकिक रीति में भी, जैसे जब कोई काफी बीमार हो जाता है, पहले तो गोलियां देते हैं, दवाई देते हैं, फिर इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहला काम और क्या करते हैं, वो ड्रिप लगा देते हैं सलाइन, वो टप 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 टपकता रहता है। और जितना ये कंटिन्यूटी होती है लगातार, उतना वो शक्तिशाली वो चीज हो जाती है। तो इस कारण से कोई भी चीज अगर होती है उसमें लगातार कंटिन्यूटी वो होना, बाबा जैसे कहते हैं ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, ये ज्वालामुखी शब्द निकला कहां से, हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है माता का, वहां ज्वाला जी का मंदिर है, जैसे देवियां होती हैं ऐसे एक ज्वाला देवी कही जाती है। और वो पहले ओरिजिनल ऐसा कि उसके मुंह से हमेशा ज्वाला आग निकलती रहती थी, इसने उसे ज्वालामुखी कह दिया। तो जब ऐसे आग निकलती रहती थी, लोगों की बड़ी भावना थी और ज्वालामुखी है ये देवी है, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता था वो बोलते हमारे दादा के दादा पर दादा के टाइम से ये आग निकल रही है और अभी तक बुझी नहीं है, एक बार भी लगातार निकलती रहती है, तो लोगों की मान्यता थी, आते रहते थे। तो हम भी जिस डिपार्टमेंट में कंपनी में काम करते थे उसका काम था जमीन से तेल और गैस निकालने का, तो उधर जब सर्वे हुआ, हमसे पहले की बात है, तब तक हमने 1950 वगैरह के बाद, तो जब वहां सर्वे किया गया तो देखा गया वहां नीचे गैस के भंडार हैं काफी, और वहां पर देखा और तो लोगों ने बताया वहां के लोगों को कि भई ये देवी जो है मुख से जो ज्वाला निकल रही है ये और कुछ नहीं, ये गैस है अंदर से वो निकल रही है, और वो गैस जैसे जला दी गई है तो वो लगातार जलती रहती है, गैस लगा जैसे आजकल किचन में गैस होती है ना, और बस कुकिंग गैस ऑन करो लगा दो, जब तक है गैस सिलेंडर में या पाइपलाइन में जलती रहेगी। लेकिन लोगों की तो भावना थी अंधश्रद्धा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमारे दादा के दादा इतने 100-150 साल से ये तो गैस निकलती चली आ रही है। तो जो उधर काम करने वाले थे इस कंपनी के, उन्होंने उन्हें क्या करा कि ये जहाँ देवी का मूर्ति थी ना उधर देखा, तो जहां से ये जमीन के नीचे से गैस निकल रही थी उधर से रास्ते उस पाइप में वाल्व एक लगा दिया, यानी कि जिससे बंद हो जाए और खुल जाए। तो उन्हीं के ही उसको बोला जो सरपंच था पंचायत की, आप आके इसको देखो ये है, हम जैसे बता रहे हैं ये गैस है जल रही है, आप इसे बंद करो। उन्होंने बंद किया, वाकई वो तो बुझ गई क्योंकि जब गैस की सप्लाई बंद हो गई आग बुझ गई। फिर उन्हें बोला कि अच्छा आप इसे खोलो, खोला और उसको जलाया, वो जलने लगी। तो ये लगातार की बात है, कंटिन्यूटी, एक सेकंड को भी अगर आपने उसे बंद कर दिया ना तो कंटिन्यूटी लगातार जैसे ब्रेक हो गई और वो निकलना जलनी बंद हो गई। तो ऐसे ये जो बाबा ज्वालामुखी योग का कहता है, यही है ज्वालामुखी। हम ब्राह्मण है ना, तो हमारा योग भी ऐसा हो जहां जिसमें ब्रेक ना हो। और उसका भाव ये नहीं, अगर पूरा योगी करेंगे तो सेवा और कार्य व्यवहार वो कैसे चलेगा। यानी कि बुद्धि के अंदर हमेशा कभी भी कोई नेगेटिविटी ना हो, किसी के लिए दुर्भावना ना हो, शुभ भावना कामना, जब याद की भी अलग अलग स्टेज होती है, कोई बिल्कुल बहुत ऊंची एकदम विकर्म भस्म होने की स्टेज और कोई ऐसे साधारण याद। तो आवश्यकता इस बात की है और बाबा अभी धीरे धीरे हमें उसी स्थिति की ओर लेता जा रहा है जो इस लगातार एक घंटे तक तो हो गया, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये भी हो कि भाई और कम आधा घंटे में और 15 मिनट में करें। क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा बाबा का एम यही है, लक्ष्य हम बच्चों को संपूर्ण बनाना। तो इसलिए ये भी जो बाबा कई बार कहता है ज्ञान टपकना चाहिए, लगातार अगर ज्ञान की बात रही ना तो माया को आने का कोई चांस नहीं रहेगा। नहीं तो जहां भी वो दो बूंद के टपकने के बीच का समय होता है और बुद्धि में अगर वो अगर खाली रहा, माया तुरंत अपना घर कर लेती है। कई बार हम तकलीफ विघन आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, उसे भी माया समझ लेते हैं। विघन और माया में क्या फर्क है? कोई विघन आया और माया, कैसे पहचानेंगे ये विघन है ये माया है? विघ्न जो है हमेशा बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। विघ्न कोई भी प्रॉब्लम, मानो हम सेंटर जाने के लिए घर से निकले और हमारा कार है स्कूटर है या साइकिल, जैसे बाहर निकले तैयार होके देखा तो पंचर टायर। अब क्या करें, बहुत दूर है सेंटर, सुबह सुबह का टाइम है, रिक्शा नहीं मिला, मिलेगा तो ये है। तो है विघ्न आया, लेकिन अगर ये विघ्न हमारी लगन की अग्नि को कम कर दे और हम समझे चलो अभी नहीं जाते हैं और अंदर जाके हम सो गए टाइम है, या तो वो अंदर से जो हमें कमजोर बना देता है विघ्न का रूप, वो है माया। क्योंकि वो माया का बात जो है हमें कमजोर करती जाती है। नहीं तो अगर जाने की लगन होती है तो किसी ना किसी रीति से उसका जाने का ढूंढेंगे, कोई बस का, कोई रिक्शा का, कुछ थोड़ा आगे चलेंगे। और बाबा हमेशा कहता है हिम्मत का एक कदम हमारा होता है तो बाबा की मदद के 1000 कदम आ जाते हैं। एक बार अगर हिम्मत का कदम बढ़ाया तो कोई ना कोई रीति से बाबा की मदद मिल ही जाएगी और वो हमें वहां तक पहुंचा ही देंगे। तो इसलिए ये अंदर पहचानने की जितनी शक्ति, और इसीलिए बाबा कहता है क्या करो, हमेशा बाबा एक बात खास कहता है कि विचार सागर मंथन करो। लौकिक में भी दूध में मंथन होता है ना, जब करते हैं तो क्या निकलता है, मक्खन जब निकलता है वो शक्तिशाली होता है। ऐसे ही विचार सागर मंथन करो कई बार बाबा कहता है। और फिर बाबा कई बार ये भी कहता है, मुरली में भी माता है कोई कहते हैं बाबा हमारा विचार सागर नहीं चलता है, चाहते हैं मंथन नहीं होता है तो क्या करें। तो बाबा ने क्या क्या युक्तियां, कई बार बाबा मुरली में युक्तियां बताते हैं, विचार सागर मन, क्या युक्ति है जो सबसे सहज है और बाबा ने कई बार बताई है युक्ति। मंथन नहीं चलता है तो मंथन चलना शुरू हो जाए और बस एक बार मंथन शुरू हो गया तो ज्ञान की जो शक्ति है ना वो हम महसूस करते चलेंगे, वो ज्ञान को हम अपना बना लेंगे। देखो जब तक ज्ञान अपना नहीं बनाते तो क्या होता है, ज्ञान तो अच्छा होता है लेकिन उससे शक्ति नहीं होती है, तो खुशी शक्ति शांति आनंद प्रेम जो आत्मा के गुण हैं उन गुणों में हम हमेशा स्थित नहीं रह पाते। जैसे बैंक होता है ना, बैंक का कैशियर होगा लाखों रुपए गिनेगा दिन भर में, इधर का पैसा उधर, उधर का उसने ये दिया जमा किया इतना उसको दिया, लाखों गिनेगा, उसे उससे खुशी नहीं होगी क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है उसने करा। लेकिन जब एक तारीख होगी या महीना होगा और उसे उसकी सैलरी मिलेगी तनख्वाह मिलेगी वो चाहे 10-20 हजार ही होगी उससे उसे खुशी होगी, क्यों, वो उसका अपना पैसा है, उस पर उसका अधिकार है, जैसे भी चाहे वो खर्च करे। ऐसे ही ज्ञान तो बाबा रोज सुनाता है लेकिन उस ज्ञान को हमने अपना कितना बनाया, और अगर जो भी हम उसे अपना बना लेते हैं तो वो शक्ति आ जाती है और फिर हम उस ज्ञान को कैसे भी यूज करें, कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया, कोई माया आई, कोई संबंधों में कहीं कटुता हुई, कोई भी ऐसी बात हुई उससे हम उनको ठीक कर सकते हैं, वातावरण को परिस्थिति को। इसी को बाबा कहते हैं हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो जो बाहर की परिस्थिति को भी बदल दे। तो इसने विचार सागर मंथन का सबसे सहज तरीका एक बाबा ने ये बताया है, ये जो बाबा ने चित्र बनवाए है ना, चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, मानो कोई भी कल्प वृक्ष का चित्र है, इसके सामने जाके बैठ जाओ और इसको देखो और फिर इसमें नीचे जैसे हम किसी से बात करते हैं ऐसे ही उस समय चित्र को देख के अपने से ही बात करें। जैसे चित्र तो सामने है दिख ही रहा है, बस नीचे जड़ है, जड़ में ये अष्टात्माएं जो बैठे हुए हैं, इमेजिन बाबा बस मैं भी सृष्टि के आधार मूरत आत्मा हूँ, इमेजिन करो विजुअलाइज करो देखो उन आत्माओं के साथ मेरा भी चित्र लगा हुआ है, मैं सृष्टि की आधार मूरत आत्मा हूँ और पूरे कल्प वृक्ष की सर्व आत्माएं अनेक धर्मों की आत्माएं जो भक्ति मार्ग की आत्मा है वो सब मेरे आधार पर टिकी हुई है। जड़ पेड़ तो दिखता ही है ना, ये सारा का सारा, फिर कैसे उसमें से दो पत्ते निकले, जो बाबा ज्ञान बताता है, अगर किसी को हम जैसे सप्ताह कोर्स या कुछ भी कराएं उसे जो बताते हैं वो अपने को ही बताते चलो, बोलते चलो, उसकी थोड़ा गहराई में जाते चलो, फिर कैसे मुख्य तना आया, सतयुग आया, सतयुग में जो बाबा ने कहा है बस सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, डबल ताजधारी होते हैं, जो जो बाबा वहाँ ये जो बाबा ने कहा है कि बस ऐसे सोने चांदी के महल होंगे, वहाँ 36 प्रकार के भोजन और प्रकृति बहुत सुखदायी होगी, बड़े पुष्पक विमान, बड़े बड़े महल, तो वो चीज अपने अंदर, क्योंकि चित्र सामने ही से लाना और अपने से बात करना सहज हो जाता है, जब चित्र सामने नहीं होता तो बुद्धि भटक जाती है, थोड़ा जो कोई काम पड़ा होगा घर गृहस्थी का नौकरी का धंधे का वो आ जाएगा, इस बात से बुद्धि भटक जाएगी, लेकिन चित्र सामने होगा तो बस आंखों से देखते रहेंगे और बुद्धि से उन बातों का वर्णन करते रहेंगे। ऐसे पूरा कल्प वृक्ष का चित्र करते करते ऊपर तक पहुंच जाओ सारी बात, फिर उसको एक बार पढ़ो, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है ना, एक बार लेसन पढ़ा याद नहीं हुआ फिर एक बार और पढ़ेगा, फिर किताब को एक तरफ रख देगा, बिना किताब के उस बात को याद करने की कोशिश करेगा। ऐसे हम सब भी तो बाबा के विद्यार्थी हैं, तो एक बार दो बार चित्र को देखो, फिर जैसे चित्र के सामने से हट जाओ और फिर उसी बात को बुद्धि में लाओ बिना चित्र के माध्यम से, एक बार दो बार करोगे तीन बार वही विचार सागर मंथन है। बिना चित्र की मदद के वही बात बुद्धि में आती रहती है, सुदर्शन चक्र फिराओ, त्रिमूर्ति के सामने कभी बैठो। तो ये विचार सागर मंथन का बड़ा सहज तरीका है, और इसीलिए जितना जितना विचार सागर मंथन होगा, होता चला जाएगा, उतना उतना शक्ति का भंडार इकट्ठा होता जाएगा। इसीलिए बाबा ने कल या परसों कल ही मुरली थी ना, अनुभवी मूरत बनते जाओ। बाबा भी डेट कॉन्शियस नहीं करता है, मानो बाबा बता भी दे चलो 2000 में विनाश होगा, चलो आप अगर बन भी गए, लेकिन जिन पर राज्य करना है वो आत्माएं नहीं बनी नहीं आई, किस पर राज्य करेंगे सतयुग में, वो सब बाबा ने बताया ना। तो खुद अनुभवी मूरत बन के दूसरों को अनुभवी मूरत बनाना है जो बाबा ने कहा। और ये अनुभवी मूरत कौन बन सकता है? हाँ, जिस पे अपना गुण और शक्तियों का खजाना है, वो चेक हम करते चलें गुण शक्तियों के खजाने को और दूसरों को देते चलें। अगर किसी भी चीज में कमी है, किसी मानो अष्ट शक्तियां हैं, 7 शक्ति तो है, 1 शक्ति की कमी है, तो ये पक्का समझ लो कि अंत में जो पेपर आएगा वो मेरा उसी शक्ति में आएगा जिसमें कमजोर हूं मैं। जो गुण की कमी है उसी के ही रूप में पेपर आएगा, जिससे माया को चांस मिलेगा और हरा देगी, क्योंकि उस चीज में कम है। तो इसलिए अपने को ये देखते चलें कि किस गुण या शक्ति की हमारे में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो इसलिए ये विचार सागर मंथन करके अपने को और आगे, और ये मंथन करने का बड़ा सहज तरीका है। घर में रहते हैं आप लोग, जब थोड़ा घर से काम से फुर्सत हो, जब भाई लोग फुर्सत हो, बस जेब से डायरी निकाली, बाबा की वो मुरली की पॉइंट पड़ी, उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन किया, चल दिया। घर में तो माताएं होती हैं, इसने फ्रीडम थोड़ी हुई, चित्र के सामने जाके बैठ गए, वो रिपीट करने लगे अपने को। जब दूसरे को बोलते हैं तो अटेंशन होती है, कहीं भाई कोई गलत ना बोल जाए, क्या बोल रहे हैं, ये तो आप अपने से ही बात कर रहे हैं, और जो बाबा ने बुद्धि में ज्ञान दिया उसी को रिपीट करते रहेंगे मंथन। इसीलिए वैज्ञानिक रीति से ना इस विचार सागर मंथन को बड़ी अच्छी परिभाषा की है। विचार, विचार में क्या है, वी कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, विचार, वी जो है कितनी बार, 4 बार, वी, ये भी विक्ट्री का सूचक है, विजय का, है ना। जहाँ हर एक आदमी विजय चाहता है, जहाँ विजय है सफलता है, वहीं पर खुशी है, जो बाबा चाहता है कोई भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी ना जाए। बाबा ने छोटी सी भी मुरली चलाई लेकिन इसी बात के ऊपर बल दिया, खुशी। तो वी 4, कौन से 4 वी हैं? पहला है जहां विक्ट्री, विजय के लिए, ये एक है वी, वी माने विवेक, बुद्धि में हमारा विवेक सदा जागृत रहे। बाबा ने मुरली में, एक अव्यक्त मुरली में कहा था, कई बच्चे क्या हैं जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, ज्ञान तो बाबा ने दिया है, बुद्धि में रहता है, लेकिन अपने विवेक का खून कर देते हैं, जानते हुए भी ये नहीं करना चाहिए उस बात को कर लेते हैं, और जो करना चाहिए उस बात से छटक जाते हैं, नहीं करते। तो वो हो गया विवेक का खून करना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि विवेक बुद्धि में रहे। छोटी सी उसमें बात बताई जाती, एक व्यापारी था, तो व्यापारी होते हैं ना, तो घोड़े का, पुराने जमाने की बात है, घोड़े का व्यापारी एक जगह से कुछ 20 घोड़ों को लेकर के जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव। तो उसी का ही बिजनेस वगैरह करते हैं, बेचते हैं। तो रास्ते में रात हुई तो एक जगह उसने पड़ाव डाला, तो घोड़े रात को इधर उधर न भाग जाएं, तो रस्सी है, घोड़े के पांव में रस्सी बांधी, पास के पेड़ में जाकर दूसरा छोर बांध दिया। ऐसे ऐसे सब घोड़ों को वो कर रहे था, वो व्यापारी और उसके नौकर। तो 16 घोड़ों को तो उसने बांध दिया। अब थोड़ी रस्सी कम पड़ गई तो क्या करे, तो एक छोटा सा और मतलब एक रस्सी का और टुकड़ा था, लिया एक घोड़े के पांव में बांधा और फिर गांठ खोल के वो पेड़ तक ले गया, पेड़ तक बांध दिया। ऐसे जो चार घोड़े बचे रह गए थे, मतलब नाटक जैसे किया उसने, घोड़े के पांव को भी महसूस हुआ जैसे रस्सी बांधी हुई है और दूसरी जगह जाके पेड़ पे बांध दिया जैसे बाकी 16 घोड़ों को किया, जाके सो गया। तो एक्चुअली इन चार घोड़ों के पांव में रस्सी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा शो किया वहां से वहां तक, और सुबह उठा देखा तो सभी 20 घोड़े थे। तो लेकिन ये चार घोड़ों के पांव में रस्सी तो बंधी हुई नहीं थी, बाकी 16 में रस्सी बंधी हुई थी। तो 16 में से उसने उनकी रस्सी खोली, वो घोड़े तो चल दिए। थोड़ा व्यापारी गया आगे, देखा तो वो चार घोड़े चले ही नहीं थे, वो वहीं के वहीं थे। हालांकि उनके पैर में रस्सी नहीं थी, कहीं पेड़ से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन वो चले नहीं, वो वहीं के वहीं थे। इससे क्या बात मतलब सिद्ध होती है, क्या बात सिद्ध होती है कि वो तो समझा, ये हम लोगों से कैसे, मनुष्य से, क्योंकि उन घोड़ों के पास गया ही नहीं था। व्यापारी को तो मालूम था ये रस्सी है ही नहीं घोड़े के पैर में, तो वहां जाके उसने वो जो पहले दिन किया था बांधी और उसी दिन ही खोल ली थी रात को ही, अगले दिन गया तो उसने ये नहीं किया, तो वो चार घोड़े यही समझते रहे हमारे पैर में तो रस्सी बंधी हुई है अभी, तो वो नहीं चले। बाकी ये वो ही है बात, जैसे कि ना हम लोग भी ज्ञान में ना चलते रहते हैं कई चीजों में, जैसे कि श्रद्धा तो होनी चाहिए, ज्ञान में श्रद्धा है, लेकिन जो एक नियम प्रमाण जैसे साधारण चीज हो जाती है वो फिर अंधश्रद्धा जैसे बन जाती है। भाई जाके योग में बैठना ही है, अमृत वेले बैठ गए, वो उतनी जागृति नहीं है, खुशी उमंग उल्लास बाबा से कनेक्शन, लेकिन जाके बैठना है इसलिए बैठ गए। मुरली में भी जाके बैठना है, सुनना है गए, भले बुद्धि पूरी इधर उधर चाहे भटकती रहे और उधर, वो फिर वो अंधश्रद्धा की श्रेणी में जैसे आ जाता है। तो इसीलिए केवल नियम प्रमाण ही होना सफिशियंट नहीं है, जो हड्डी धारणा हम करना चाहते हैं ना, अगर वो तभी होगी जब उस ज्ञान के पॉइंट को समझ करके उसके पीछे बाबा का क्या रहस्य है उसे समझ करके हम जीवन में धारण करेंगे। तो ये विवेक, यानी हमारे अपने विवेक से भी सोच के बाबा क्यों चाहता है, बाबा इसीलिए अमृत वेले विशेष शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, इसीलिए बाबा कहता है पॉइंट नोट करो, बीच बीच में पॉइंट को रिवाइज करो, जिससे कि केवल क्लास मॉर्निंग तक ही सीमित न रह जाए, लेकिन बीच बीच में वो पॉइंट को करेंगे तो वो ज्ञान हमारा अपना बन जाएगा और अपनी चीज हो जाएगी, उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो एक है ये विवेक, विचार है ना, दूसरा वी है विचार सागर मंथन का, वो है विद्या। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना, और शिक्षा भी है जो बाबा यूनिवर्सिटी है। तो विद्या, विद्या की परिभाषा क्या है, ये सच्ची विद्या, सा विद्या या विमुक्तये कहते हैं, विद्या वो है जो हमें मुक्ति देता है। तो ये भी चेक करते चलना है कि जो बाबा की हम विद्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा सुन रहे हैं, वो शिक्षा हमें हमारी कमजोरियों से मुक्ति दिलाती चल रही है, दिलाई तो है। पहले शुरू में भी जब आए थे तो कितनी और कमजोरियां थी, बाहर का खान पान, रहना सहना, हर चीज, उन सब से तो मुक्ति मिल गई, उतना तो आगे बढ़ गए, लेकिन एक स्थिति पर जाके जैसे हम कई बार स्लो हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसके आगे बढ़ना वो हमारे लिए मुश्किल प्रतीत होता है। तो इसका मतलब मुक्ति, हमारा बंधन ढीला तो हुआ है लेकिन अभी पूरा खुला नहीं है। सा विद्या या विमुक्त, वो हमें मुक्ति दिलाए। तो इसीलिए ये देखते चलना है कि, और व्यक्ति अपने से ज्यादा किसी को नहीं जान सकता, अपनी कमी कमजोरी, अपनी बात को जितना वो समझता है और दूसरे की बात को नहीं समझ सकता और दूसरे भी उसकी बात को नहीं समझ सकते उतना। इसलिए अपने अंदर झांक करके, इसीलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी होकर रहो। और इसीलिए बाबा ने कहा है कि संगठन में रहते भी ना एकांत में रहो, क्योंकि संगठन जो है वो चरित्र विकसित करता है और एकांत जो है वो बुद्धि को विकसित करता है। जब संगठन में होंगे तो बड़ा ख्याल रहेगा कोई हमसे ऐसा गलत काम ना हो जाए, सारे देख रहे हैं, उसमें चरित्र का विकास होता है। लेकिन एकांत में बुद्धि को एकांत, संगठन में है लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकाल करके और बुद्धि को अगर जितना एकांत देंगे तो बुद्धि विकसित होती जाएगी। दोनों का जरूरत है, क्योंकि हमारे ज्ञान की सफलता का रहस्य ही एक वर्ड में है, एक शब्द में है। वो शब्द क्या है? बैलेंस। बस अंतर्मुखता और जब सेवा में आए बाह्य मुक्ता। बाबा कहते हैं लव एंड लॉ इनका बैलेंस हो, गंभीरता हर्षित मुक्ता इनका बैलेंस हो। दो बिल्कुल जो अपोजिट चीजें हैं दोनों होनी चाहिए और दोनों का बैलेंस, क्योंकि देवी देवताओं में जा देखो बिल्कुल वो दोनों अपोजिट चीजें हैं लेकिन दोनों का बैलेंस है। हर्षित मुख भी हैं और ऐसा भी नहीं कि जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं बहुत तेजी से हा 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 करके हंसना, ऐसे तेजी से बात करना, वो भी नहीं है लेकिन हर्षित मुख भी है। तो सफलता का और महामंत्र जो है वो है बैलेंस। तो इसीलिए सा विद्या, ये विद्या यही मुक्ति दिलाती है और जो हमारी अंदर की कमजोरी है उनसे छुट्टी दिलाती है। तो दो वी हो गए, क्या क्या हुए दो वी? पहला क्या है? वी विवेक, दूसरा विद्या, तीसरा विनय। विनय माने नम्रता। जहां नम्रता है ना, बहुत ज्ञान के भी पंडित है। हमारा एक पिक्चर पहले बना हुआ था कि भाई वो था दौड़ योगियों की और सबकी, तो दौड़ना शुरू तो सब करते हैं, फिर एक काम का था, क्रोध का, लोभ का, मोह का, लास्ट में जाके ना, और बड़े बहुत अच्छे अच्छे योगी ज्ञानी सब क्रॉस कर गए लेकिन जो अहंकार रूपी पहाड़ था उसकी चोटी से नीचे गिर गए, उसको पार नहीं कर पाए पूरा। तो इसीलिए ये देखना है कि विनय वो मेरे जीवन का अवश्य अंग बन जाए। देखो अंग्रेजी में भी ना अहंकार, हाँ, उसका सूचक क्या, कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? आई, मैं, बस मैं भी अहंकार का सूचक है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और जो ये आई अक्षर है ना, इसकी यही विशेषता है, क्या इसे छोटे आई को अकेला नहीं लिख सकते। आई अगर अकेला लिखा जाएगा तो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, चाहे सेंटेंस के बीच में ही हो तो भी कैपिटल बड़ा ही लिखा जाएगा, छोटे आई को बीच में भी नहीं लिख सकते। अकेला अगर लिखा जाएगा कैपिटल में ही बड़ा ही लिखा जाता है। हूं गुजराती में भी ना, हूं सबसे टेढ़ा अक्षर वो हूं ही बनता है। तो इस रीति से देखो, ये जो है विनय, ज्ञान का रिफ्लेक्शन, योग का, धारणा का, हर चीज का रिफ्लेक्शन जो है हमारे विनय रूपी जो गहना है इससे ही होता है। कुछ भी हो, ब्रह्मा बाबा में भी कितना विनय था। हमें याद है इसी हॉल में ना एक भूरी दादी थे, तो वो पहरा दिया करते थे उस समय, हम भी उस आए हुए थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से, छुट्टी थी, दोपहर के वक्त सोने की आदत नहीं थी, तो देखा यहाँ पर बाहर से वो कुछ सन्यासी जा रहे थे, और सन्यासी चार पांच सन्यासी थे, उनमें एक जो मुख्य सन्यासी था वो रुका बाहर, ये बोर्ड वगैरह देखा, उसने बूढ़ी दादी को बोला हमें आपके गुरुजी से मिलना है। तो उस बहन ने कहा अभी तो भाई ये 3:30 कुछ बजे हुए हैं, आप थोड़ा देर के बाद आ जाओ, रुक जाओ तो हम बाबा से मिलवा देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे थे नहीं, हमें तो शाम को चले ही जाना है और हम तो नहीं रुक सकते। जब बहुत कहा उन्होंने तो बूढ़ी दादी अंदर गए बाबा के पास, तो बाबा के पास जाके बोला, बाबा ऐसे ये 3-4 सन्यासी आए हैं और वो जिद कर रहे हैं, हमें अभी मिलना है, फिर बाद में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची उन्हें बिठाओ, बाबा आता है। बाबा ने कभी भी अपना कोई भी टाइम होता था ना, कोई भी सेवा के लिए हमेशा उसे सैक्रिफाइस किया। तो यहाँ आके वो सन्यासी तो नीचे बैठ गए, थोड़ी देर के बाद बाबा आए और बस बाबा ने देखा और आके बड़े प्यार से उनको दृष्टि देखा, अरे बच्चे यहाँ क्यों बैठे हुए हो, ओ यहाँ संधि पर बैठो ऊपर। तो सन्यासी कहने लगे, नहीं नहीं ये तो आपकी संधि है, आप बैठो और हम तो यहाँ बैठते हैं। क्योंकि सन्यासियों में आश्रमों में एक कायदा होता है कि जो भी मठ पंथ संप्रदाय होता है, जिसकी वो गद्दी होती है वहां वही सन्यासी बैठता है, चाहे दूसरा उससे बड़ा भी आए कोई आए, वो अलग ही बैठेंगे, दूसरे की सीट पर नहीं बैठ सकते। तो बाबा ने कहा, अरे रे बच्चे नहीं देखो कितना विनय कि आप लोग तो पवित्रता बाल ब्रह्मचारी हो, आपके बल पर ही भारत रुका हुआ है। देखो ये अपने की तरफ बाबा ने इशारा करके कहा, ये तो देखो गृहस्थी है और ये, लेकिन आप लोगों ने इतने पवित्रता का जो कराया, बहुत बाबा ने महिमा की, फिर भी वो नहीं उठे। तो बाबा ने बड़े प्यार से उस सन्यासी को हाथ पकड़ के ना थोड़ा उठाया और ये संधि पर उसे बैठा दिया और बाबा सामने बैठ गए। देखो कितनी विनय, कितनी नम्रता। और वो जो सन्यासी भर करके आए थे इतना, और वो बाहरी बात कर रहे थे, हम ये पूछेंगे, यहाँ पर ये बताया जाता है भगवान सर्वव्यापी नहीं है और आत्मा निर्लेप है नहीं है आदि आदि, तो हम शास्त्रार्थ करके जाएंगे यहाँ पर। बाहरी वो काफी तेज तेज बोल रहे थे, तो बूढ़ी दादी ने बताया था बाबा को, लेकिन जब बाबा ने इतना विनय इतना प्यार से उनको यहाँ पर ना बस करा, फिर थोड़ी बहुत बात की, फिर बाबा ने कहा, हाँ कि हाँ बच्चे बोलो कैसे आना हुआ। इतना जो दिल से प्यार होता है, स्नेह होता है ना, वो आंखों से वाणी से सब चीज से रिफ्लेक्ट होता है। तो वो सन्यासी एक दूसरे को देखने लगे, दूसरा तीसरे को, हर एक कि भाई तुम शुरू करो, क्योंकि बाबा ने अपने प्यार से नम्रता से इतना घायल कर दिया था उन्हें कि उनकी जैसे अंदर से दिल ही नहीं हो रही थी। फिर भी बाद में उसने कहा, बाबा हमने सुना है कि भाई आप यहाँ पर ये बताते हो कि भाई आत्मा पशु पक्षी योनि में नहीं जाती, हमारे तो हिंदू शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2-3 बात बोली। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये भी इतना गुरु किए अपने लिए, इतने शास्त्र पढ़े तीर्थ किए, लेकिन फिर भी भगवान का वो नहीं मिला। यहाँ पर तो शिव बाबा आता है, आकर के वो ज्ञान सुनाता है, वो जो बोलता है वो यहाँ पर ये बाबा सुना देता है। ऐसा करके तो उन्होंने ज्यादा कुछ भी प्रश्न नहीं किया, ठीक है बाबा बहुत अच्छा, उसके बाद प्यार से बात करके वो चले गए। तो जो ज्ञान है हमारा, वो हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, जीवन में जितना रिफ्लेक्ट होगा, जितना उस पता चलेगा, वो सेवा करता है, न कि मुख से देने वाला ज्ञान। तो और चौथी बात है विज्ञान, लास्ट। हाँ विज्ञान माने, बाबा ने क्या विज्ञान का अर्थ बताया है, जैसे ज्ञान विज्ञान भवन है हमारा ना, तो नाम इसी ने रखा विज्ञान माने योग। तो बस जितना जितना हर चीज में हमारा ये योग बाबा से बढ़ता जाएगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप धारण होती चली जाएंगी। और ये जब विचार सागर मंथन होने लगेगा ना, तो विचार सागर मंथन के साथ साथ आत्मा बलशाली होती जाएगी, शक्तिशाली, और फिर ये ही हड्डी धारणा है, हड्डी मजबूत करना है। और जितना हमारे ये ज्ञान योग की हड्डी मजबूत होगी, उतना हमारा जो बाबा ने कहा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें महसूस हो। ओम शांति, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान कीजिए। ध्यान।